ஓம் சாந்தி. குட் ஈவினிங். ஸோ வி ஆர் கம்மிங் டு தி லாஸ்ட் செஷன், விச் இஸ் த பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன். இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ஆர் கம் ஹியர். சம் ஆஃப் யூ ஹவ் மேட் எ குட் ரிசர்ச் ஆன் யுவர் ஏரியாஸ் கனெக்டட் டு த தீம் வாட் வி ஹாவ் இட் நவ். ஸோ only concern is we have a limited time, so we have to finish it by almost by before 8, because we are starting little late now. But I request all the presenters also, we already told them that we have a time limitation, so they should go with only 5 minutes of the presentation. Audience may not get time to ask any questions, but they will share their contacts so that you can connect with them actually. Okay, so let me invite the speakers today. So may I invite Dr. Vimala Vaivala to come on the stage and occupy your seat. And Ms. Monu Sheila, yeah, please come to the stage, take your place. Mr. Prabhat Mohanty, Mr. Shivam Sharma, Renuka Jakhar and Dr. Kavita Sharma. So to start with, may I invite our sisters to invite the guest with, welcome the guest with a flower and a badge. Okay, so without losing much time, we'll start now. The first presenter is, I invite Dr. Vimal Vaivala, who is the departmental head of STG International College from Vesu, Surat. And he is going to talk about the importance of spirituality in entrepreneurship development among the graduates of Surat city. They made some study on that and they are going to give a presentation and trying to cover about how it is relevant to our theme actually. Yeah, Mr. Surat, yeah.
Thank you so much, Baiji. Before start the presentation, I would like to call my co-author to start the presentation.
Om Shanti. This is Ranjita Bhaumik with my colleague and co-author, Dr. Vimal Vaivala, for presenting a brief on our research conducted on the topic, importance of spirituality in entrepreneurship development among graduates of Surat city. In the 21st century, there has been a precedent global embrace of entrepreneurship development as a sustainable approach to harness the potential of individuals, thereby promoting job creation and economic growth. Entrepreneurship is filled with uncertainties, setbacks and challenges. Spirituality since involves principles such as integrity, empathy, mindfulness, increased focus, improved decision making power, and practicing meditation with supreme power and self consciousness can lead to better leadership, deeper sense of purpose, mental clarity and ethical grounding. It will also play a significant role in overcoming vikaras or vices, anger, greed, pride, attachment, lust, by fostering self-awareness, discipline, higher sense of purpose and uplift social harmony. Now I'd like to invite my co-author Dr. Vimal Vaivala sir to take the presentation further. Thank you.
Thank you, sister. Before start the presentation, first of all, I would like to thank the Spark team who invite me for this presentation. Thank you so much. So I would like to request, though, as an audience, please clap for them. I, Dr. Vimal Vaivala, the IT in charge of SDJ International College, Vesu. Our main objective of this study are to examine how spirituality dimension influence entrepreneur intention, networking, capability, and investigate the relationship between spirituality dimension and entrepreneurship success. For this, we make a one Google form and circulate the under the 30 years graduates from the Surat city. Amongst them, we got the response 1,320 graduates from Surat city. From them, we are doing pre-processing data and we collect 286 participants. After that, for the response, we find some push and pull effect. Push means some are not satisfied with their job, some having unemployment and economical condition. And pull factor means personal passion and family business. We also find out some challenges among the entrepreneurs due to vikas. The first one is anger. Mindfulness and emotional control can help take constructive action such as problem solving and effective communication. Through the compassion and patience, entrepreneur responds to challenging situation rather than reacting impulsively with anger. Next one is greed. Sometimes the entrepreneur, due to some sort of amount, they are investing the time and flooded by the greed. Another is vikara is, that is ahankar, we can say pride. This vikar reminding entrepreneur to remain grounded and recognize the contribution of other. It means we have to think sometimes to put our leg in some other shoes. Another is attachment, that is moh. Due to specific outcome or personal biases, entrepreneur do not take the right decision. Now, these are the problem which we are finding during the studies. After that, we are giving some suggestions for this entrepreneur. The first is inner awareness and self-control. Through the practice like meditation, yoga, prayer, enabling them the ethical decision in business. The next is cultivating compassion and empathy. Entrepreneurs who embrace this understanding are more likely to develop compassion and empathy, seeing their employees, customer and competitor as a fellow human being, not just a mean of profit. The next is value-based. Integrity, honesty, humility are the values to create workplace that prioritize families, equality and respect. The next is detachment from ego. Entrepreneurs often face challenges when their pride or ego might cloud their judgment. With the spiritual insight, they can transcend this tendency, leading to more balance and inclusive decision making. I would like to give one very good example, the Steve Jobs. We know the name, he is the founder of Apple, right? He meet Neem Karoli Baba, and for the innovation purpose, you can see that reference Neem Karoli Baba and Steve Jobs in Google. We will collect the idea. Now, let's focus on the findings. Graduates of Surat city, the data is analyzed using multiple regression, internal consistency test, and confirm all scales exhibit alpha threshold, and demographically respondents were under 30 years old. The gender distribution is 54.6% male, 45.4% female. The graduate represented various faculties in that 38.1% management, 29.7% commerce, 24.5% arts, and 7.7% others. Now, conclusion of the study. The findings of the study underscore the significance of integrity spirituality into entrepreneurship development programs for students. Now, I would like to conclude my presentation with the one slok which Sri Krishna told to Arjun during the Mahabharata that I relate with this topic. Yogastha Kuru Karmani Sangaha Tyaktva Dhananjaya Siddhaya Siddhyo Samaputya Samatvam Yoga Uchyate. In entrepreneurship, maintain a spiritual balance, focusing on efforts without attachment to outcome can lead to sustainable growth and development. Thank you. One more time, I would like to thank the Spark team for the accept my paper. Thank you so much to invite me. Thanks a ton.
So thank you, Dr. Vimla, for your short and brief presentation. Next, I would like to invite Ms. Monu Sila. She is from the Central University of Haryana, Mahendragarh. Yeah. So she is trying to give about the psychology of spirituality, understanding of the interplay between mind, spirit and the well-being actually. So let me invite Monu Sila actually.
Om Shanti and good evening everyone. आप में से कौन कौन कल प्रेजेंट थे यहाँ पर? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? वाओ, ग्रेट। तो कल एक छोटा सा बच्चा था, बच्ची थी यहाँ पर, भूमि, आई गेस दैट फॉर है ना, भूमि। उसने हमें कुछ प्यारी सी रेजोल्यूशन सिखाई थी कल, डू यू रिमेम्बर दैट? है ना, आपके मन में कितनी ही चीजें चल रही होंगी उस टाइम पर, बट जब वो बच्चा आपको वो रिजोल्यूशन बता रहा था, फॉर अ मोमेंट यू फॉरगॉट एवरीथिंग, राइट? एक स्माइल थी आपके फेस पे, एक सीरिनिटी थी, आपने एक्सपीरियंस की सबने? यस यस। तो दैट वॉज स्पिरिचुअलिटी दैट शी वॉज टॉकिंग अबाउट, एंड आपको उससे खुशी मिली, दैट्स योर वॉट इमोशन है ना, दैट इज अ इमोशन। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि हाउ द साइकोलॉजी इज रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी, हाउ साइकोलॉजी इज रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी। जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, लाइक मेडिटेशन, राजयोग भी है ना, ये सब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये साइकोलॉजी क्या है, इसकी क्या है, इसके पीछे वाई इज इट वर्किंग है ना, वर्किंग लाइक मैजिक, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। फाइन, I have done review of literature and उसके बाद I have concluded something जो मैं आपके साथ discuss करूंगी। तो first of all is कि ऐसा नहीं है कि spirituality पे काम नहीं हुआ, बहुत सालों से इस पे काम चल रहा है। एक psychologist है Carl Jung, उनका concept है individuation का, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, self actualization, सेल्फ रियलाइजेशन पर काम करते हैं। इंडिविजुएशन का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन। ही सेड कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को सेल्फ रियलाइजेशन के साथ लिंक कर ले तो व्हाट विल हैपन, वी विल अचीव द ट्रू कनेक्शन विद आवर ट्रू सेल्फ, जो आप हैं। भूमि ने कल कहा भी था कि जो मैं बात कर रही हूं वो मैं आत्मा हूं, और जो ये मेरी वेशभूषा है ये मेरा शरीर है। सिमिलर टू दैट, इफ यू विल लिंक योर सेल्फ रियलाइजेशन विद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो व्हाट विल हैपन, यू विल हैव बेटर सेंस ऑफ योर सेल्फ, हु यू आर, कौन है आप, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, इस लाइफ में हम आए ही क्यों हैं, क्या उद्देश्य है हमारा। नेक्स्ट इज मैस्लो। अब मैस्लो ने कुछ हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, उसने कहा था कि कुछ नीड्स होती है जो एक के बाद एक हम पूरी करते, उसमें दे सेड कि द लास्ट स्टेज इज व्हाट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बट उन्होंने एक चीज और कही कि अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, देन कम्स द ऑब्जेक्टिव। एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजी। तो वेन आई ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग, आई फाउंड सम वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, जो कि बताते हैं कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है इट इज पॉजिटिवली लिंक्ड टू स्पिरिचुअलिटी। दैट मीन्स कि अगर आप डेली स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस प्रैक्टिसेस करते हैं तो लाइफ सेटिस्फेक्शन होगा, आपका जो स्ट्रेस है इट विल रिड्यूस टू सम एक्सटेंट, इवन जो आपकी फिजिकल हेल्थ है दैट विल ऑल्सो बी गुड। वाई? बिकॉज इट विल हेल्प यू इन अचीविंग द पर्पज, पर्पज होगा, हम अकॉर्डिंगली काम करेंगे, खुश रहेंगे, राइट? देन इसकी सोशल सपोर्ट थीम भी है ना, सोशल हार्मनी कैसे अचीव कर सकते हैं, तो जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है ये सोशल सपोर्ट फोस्टर करने में हेल्प करती है। सोशल सपोर्ट होगा तो वी विल बी हैविंग ग्रेटर लाइफ सेटिस्फेक्शन, यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ, यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ एंड वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। मेटा एनालिसिस कंडक्टेड बाय गार्शिया, ही सेड कि पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी इज लिंक्ड विद बेटर साइकोलॉजिकल वेलबींग। दैट मीन्स कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी रोज प्रैक्टिस करेंगे, यू विल हैव आपकी जो एंजाइटी है, आपका जो डिप्रेशन है, टू सम एक्सटेंट कम हो जाएगा। हाउ अमेजिंग इज दैट कि साइकोलॉजी इतनी लिंक है स्पिरिचुअलिटी से कि साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। वाओ, ग्रेट। ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि डिप्रेशन और एंजाइटी कम करने की क्षमता है इसमें। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो कॉपिंग स्ट्रेटेजी, कि अगर कोई भी चीज आ रही है आपकी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप बेटर वे में कॉप अप कर पाएंगे उस चीज से, आप अच्छी कॉपिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, भागेंगे नहीं उसके साथ, समझेंगे उसको चंक्स में तोड़ के और फिर एक्शन ले पाएंगे, अच्छा एक्शन ले पाएंगे। एक स्टडी में ये भी मिला है जिन्होंने एडोलसेंट पे कंडक्ट की थी कि पहले मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्ट की एंड दे कंक्लूडेड कि प्री और पोस्ट में बहुत डिफरेंस था. जब एडोलसेंट्स को उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करवाई तो जो पहले उनका एंजाइटी और डिप्रेशन का स्कोर था और बाद में जो स्कोर था बहुत डिफरेंट था. एंड डिफरेंट का मतलब है कि बहुत हद तक कम हो गया था. Then is spirituality and positive psychology. They have also positive correlation. Positive correlation simply means कि अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घटेगी. तो उसके साथ भी पॉजिटिव कॉरिलेशन है स्पिरिचुअलिटी का. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ बोलने में आती है, इसका आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपके ब्रेन पे, आपकी कॉग्निशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है ये. एंड दैट टू इन अ पॉजिटिव वे. एंड नेक्स्ट इज कॉग्निशन. कॉग्निशन में आपकी आती है डिसीजन मेकिंग, जो आप डिसीजन लेते हैं किसी चीज के लिए, ठीक है, मेंटल क्लैरिटी, मेमोरी, अटेंशन, ये सब आपका कॉग्निशन का पार्ट है. अगर आप रोज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी आती है. और एक स्टडी में तो ये भी मिला है कि जो एल्डर्स को एक प्रॉब्लम होती है लेटर स्टेज में जाके डिमेंशिया, तो डिमेंशिया के भी जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हेल्प करती है आपकी. Then, if we talk about interventions, okay, what else can be done by using spirituality and spiritual practices? So, I have found in my literature कि हम spirituality based therapies introduce कर सकते हैं, like mindful and meditation को psychology के साथ combine करके. Already है, हम कर रहे हैं, उसमें भी meditation करते हैं, right? One of my seniors, she has done her PhD in Raj Yog. तो वहां पर they have found very positive इफेक्ट्स ऑफ राजयोग, है ना. तो पहले ही हम डिस्कस कर रहे हैं सब चीजों को, रिसर्च हो रही है और बेटर रिसर्च की जा सकती है. सेकेंड थिंग इज कि रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशन हो सकते हैं. दैट मीन्स कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती है कि पहले क्या था, हमारे पास अभी क्या है कि हमने एक महीना, दो महीना, दो साल, पांच साल इतनी एक्सरसाइजेस करवाई. तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी कि पहले कोई कैसा था और बहुत सालों बाद अगर दोबारा उस पर स्टडी की गई तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट आए ओवर द टाइम, ऐसी स्टडी भी की जा सकती है स्पिरिचुअलिटी के साथ. तो हियर कम्स द रिसर्च गैप. रिसर्च गैप इज अ पार्ट ऑफ रिव्यू पेपर कि मुझे इतना सब पढ़ने के बाद क्या कमियां लगी जो और की जा सकती है. पहला है लिमिटेड इंटीग्रेशन. हम बात करते हैं कॉग्निशन की, हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, हम बात करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की, पर इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं है कि कैसे ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, उन पर बहुत कम रिसर्च है. सेकेंड थिंग कि बहुत अलग अलग डेफिनेशन है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है जो नॉर्मल लोगों को, मेरे जैसे लोगों को समझ में नहीं आती, अल्पबुद्धि मेरे जैसे लोगों को समझ में नहीं आती, फाइन. तो उनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लोगों के लिए एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन बनाई जा सकती है. थर्ड थिंग इज कि लैक ऑफ जनरलाइजेशन. डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग है, अलग वे में हम प्रैक्टिस करते हैं चीजों को. तो एक जैसे राजयोग का हमें एक मैनुअल दिया गया है ना, तो ऐसे ही बहुत सारी एक्सरसाइजेस का एक मैनुअल दिया जा सकता है. तो सो दैट जो कल्चर्स है वहां तक वो चीजें पहुंच सके और यूनिफॉर्म फॉर्म में पहुंच सके. एंड लास्ट वन इज कि क्वांटिटेटिव मेजर्स. कि बहुत सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स है हमारे पास, बहुत सारे हम क्वेश्चनर यूज करके कर लेते हैं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन है कि कोई चीज मैंने की उसके बाद मुझे कैसा फील हुआ, उसके ऊपर बहुत कम रिसर्चेज है. लोग जानना ही नहीं चाहते कि एक्चुअली आपने क्या फील किया. आप यहां पे रहते हैं, आप कैंप में आते हैं, आपने कैसा फील किया. आई विल टेल अबाउट माई एक्सपीरियंस कि आई वॉज सिटिंग देयर, ठीक है, आई वॉज हैविंग दिस एंग्जाइटी, आई वॉज सो एंग्शियस कि प्रेजेंटेशन है, हॉल है, लोग हैं, बट कल सर ने एक बात कही थी जो मेरे दिमाग में थी कि ये तो अपना ही घर है ना, हम भगवान के घर में आए और भगवान के घर में कैसा डर. दैट सिंपल थॉट उसने मेरी उस टाइम की जो एंजाइटी थी वो कम कर दी. सी, तो आई कैन टेल बाय माय एक्सपीरियंस एज वेल कि दिस एक्चुअली वर्क्स. और इसके ऊपर और बेटर स्टडीज की जा सकती है, क्वालिटेटिव स्टडीज की जा सकती. दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. एंड फॉर क्वेश्चन एंड आंसर you can contact me at imadhushila@2403gmail.com. So I will provide you with that. Thank you so much for hearing me.
Thank you, Monushila, for your presentation. Next, I would like to invite Mr. Prabhat Mohanty. He is the Axis Bank branch manager. But his case is basically, it is not a study research, but it is a practical research. Practically, what he has experienced in his life with a patient is going to give us in a brief way. Please make it brief, sir, because time is running out actually. But it's a wonderful experience what you have it. So please go ahead.
Thank you, brother. Om Shanti, my divine brothers and sisters. सबसे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये मौका दिया है यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होकर आपके सामने मैं अपना अनुभव शेयर कर सकूँ. अनलाइक माई को स्पीकर, दिस इज नॉट ए रिसर्च वर्क बट दिस इज ए रियल एक्सपीरियंस, रियल लाइफ. मेरा जो अपना अनुभव है मैं आपका शेयर कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू प्रेजेंट the real life case of Padmaja Mohanty, who is 46 years old. She hails from Bhubaneswar, who has always experienced the presence of Almighty Authority during her disease journey for the last 6 years. She was diagnosed with breast cancer in 2018. In the last 6 years, she has undergone 4 major surgeries, 4 radiation therapies, including 2 radiation therapies in the brain. She was also affected by COVID-19. She had a partial brain seizure. In the last year also, she was completely bedridden with neurological dysfunctioning and partial paralysis. She was having loss of memory, loss of speech, and was on nasal feeding for 3 months last year, last September to December. Now I'm going to tell you how this Rajyoga meditation and adopted practices of the Supreme Father has helped her to fight this journey for the last 6 years. After her brain surgery in 2020, she visited Brahma Kumaris Ashram at Nagasabhyangi, Bhubaneswar for learning Rajyoga meditation and completed 7 days course there. Also came in contact with B.K. Leena Didiji, Director Bhubaneswar Subzone, who advised her to practice Raj Yoga meditation under the guidance of Sister Devasundha Ji of Nagasundhangi Ashram. Later on, we met Srikant Bhai Ji at Durgesh Didi's Ashram at Bhubaneswar and became member of Yogi Prayog Group, where her photo was posted to receive the powers of Supreme Father through more than 500 members at that time. She has been doing Raj Yoga meditation daily in the Brahma Muhurt and also in the evening and in Gyan, Baba's Gyan, for the last 4 years. She is also listening to the godly version, Baba's Mahavakya, we call it Murli, and writing elevated thoughts like May Master Sarva Shaktiman Atma Hu on daily basis. Also doing Shyama Jachana, to forgive and to seek forgiveness, to settle her karmic account. She is also taking water charged with meditation energy and also taking food in the remembrance of the Almighty Authority every time. In fact, in the center, at the advice of Sister Devasundha Ji, we started offering bhog in Baba's remembrance during the last year at home, and taking the same which has also energized her to receive Baba's blessings, and also bhog in her name was also offered to the Supreme Father by Sister Devasundha Ji at the center itself. She has been receiving powers through collective meditation by BK brothers and sisters every time whenever she has undergone any major surgery or illness in the ashram. In the last year, when she was completely critically ill for more than 3 months and having serious neurological dysfunction, and also she was not able to recognize a loss of speech and also she had a memory loss, the collective meditation by BK brothers and sisters by focusing on the brain part has in fact immensely helped her to recover from there. She is also participating in the collective meditation which happens at the center every Sunday. With the blessings of the Almighty Authority, she is recovered now and has come to attend this program, which is a miracle in itself. What basically I want to tell you, actually after learning the Rajyoga meditation, she has accepted the disease without worrying about it and experienced powers within to fight and heal, understanding the philosophy of karma. Also, her mind became stable mostly and she gained mental strength to overcome the challenges. And also it has substantially reduced her wasteful thoughts Rather, she imbibed a lot of positive thoughts in her mind to fight this journey. And she is always having the feeling of happiness within, and having a utsaha umang within by experiencing in Baba's company always. And she has, this has helped in improving her tolerance power, sahan shakti, and power to discern, parakhnega shakti. And it has increased her self-confidence, atma-vishwas, to pass through this journey. And again, she had this miraculous recovery from illness during the last September, October, December, and able to stand up of her own with renewed enthusiasm and confidence after facing so many challenges in the last 6 years of this journey by the blessings of Baba, Brahmin family and well-wishers. Her present condition is that the disease is under control and stable as per the lab test, paired CT and MRI scanning done in the first week of August 2024. I express my sincere thanks to Baba from our core of our heart for being with us always and giving us strength to pass through this journey so far. Our sincere gratitude to BK Srikant Bhai Ji, BK Lena Didi Ji, BK Durgesh Didi Ji, BK Devasundar Didi Ji, the whole Brahman Parivar, treating doctors, nursing staff and all well-wishers for their support and blessings through this journey. Baba sada hamara saath hai aur hamesha rahenge. Thank you all. Thank you Baba. Om Shanti.
So this is यह है रियली लाइव एग्जाम्पल है राजयोग प्रैक्टिस में कैसे इतना होपलेस केस भी आप बीन करेक्टेड एंड नाउ सी इज अ लिविंग एग्जाम्पल आई थिंक शी हैज कम हियर एक्चुअली राइट शी हैज कम ओके शी इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ द प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ दिस मेडिटेशन हैज इम्प्रूव्ड द कंडीशंस वेरी मच एक्चुअली एंड दैट टू विद द सपोर्ट ऑफ अ कलेक्टिव मेडिटेशन कितना फायदा हुआ एक्चुअली वो देखना है एक्चुअली सो इसलिए राजयोग मेडिटेशन में कितना कितना फायदा है ये है प्रैक्टिकल लिविंग एग्जाम्पल एक्चुअली सो एक बार और सब उनको ताली बजाना एक्चुअली थैंक यू एंड द पेशेंट इज नन अदर देन इज योगल एक्चुअली सो यू शुड नो दैट वेरी क्लियरली थैंक यू प्रभुपाद जी फॉर द थिंग्स यस सी इज द पर्सन हू हैज गॉट द थिंग्स एक्चुअली
ओम शांति बाबा बाबा की वजह से नहीं है बाबा हमेशा मेरे साथ है जब मैं सर्जरी के जाती हूँ तो मुझे एक ही बात पापा से याद आती है मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ थैंक यू ये मेरे
ओके थैंक यू फाइन सो वील मूव हेट थैंक यू प्रभुपाद जी एंड वी गो टू द नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर शिवन शर्मा हु इज द पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड ईज गोइंग टू गिव अस समथिंग ब्रीफ अबाउट द इफेक्ट ऑफ Weeks yoga and he's also studied about the cognitive effect about the sleep sleep activities and also perceived stress how it is going to impact because of or how it can be improved through these meditation effects actually so let me invite Shivam Sharma actually
so my name is Shivam Sharma I am a PhD scholar from Central University Rajasthan and today I'll be presenting my paper The effect of 8-week yoga on cognitive function, sleep, anxiety and perceived stress among university students with elevated anxiety, a randomized controlled trial. One, Swami Vivekananda said, My faith is in the younger generation, the modern generation. They will work out the whole problem like lions. But unfortunately, today's younger generation are suffering from so many health problems, especially mental health problems. So one among them is anxiety. Anxiety is a feeling of fear and terror. It's a common mental health issue affecting significant portion across the globe. In the university student, the prevalence rate of anxiety is 32%, means in every 100 students, 32 are suffering from anxiety. Anxiety affects the cognitive function. It impairs the cognitive functions like decision making, attention and memory. Anxiety also have a negative correlation with the sleep. Means if the anxiety will increase, our sleep will get disturbed. So, Yoga practice has a positive effect on physical, psychological, cognition and mental measures. But there is a paucity of research examining the effect of yoga on cognitive function and sleep among the university students, or as I can say, a youth. We all know that there is an effect of yoga, but there is less scientific effect evidence to support that. So in that manner, we have conducted one study in which we have taken students from the Central University of Rajasthan of age 18 to 25 and divided them into the two groups, yoga group and walking group. And we are keen to know whether their cognitive functions, which we have checked, the selective attention and working memory with the help of Pebble software, sleep we have checked with the help of a questionnaire called Pittsburgh Sleep Quality Index, state anxiety we have checked with the state and Tate anxiety inventory, and perceived stress we have checked with the perceived stress scale. So out of 355 students, 70 were shortlist for this study and randomized into the two group with the help of CHIT method, 34-34 in the two group. So for the yoga intervention, we have given a 60-minute yoga intervention 3 times in a week for 8 weeks. And for the walking intervention, we have given 60-minute walking intervention 3 times in a week for 8 weeks. For yoga intervention, we have used a developed yoga module which was developed by the National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore. It is specially designed for the anxiety problem and anxiety-related problems. So in the results, we found that the yoga group have shown better attention as compared to the walking group. And yoga group also shows the better sleep quality as compared to the walking group. The stress level is also significantly very low in the yoga group as compared to the walking group. So in the results, I can say that the 8-week yoga intervention is very helpful in controlling the anxiety and improving the cognitive function and the mental health. As we all know, students are the backbone of the country and the world. They are the future leaders and the decision makers. If their mental health and cognitive functions are well, they can improve the social harmony. In a research, it is also said that the person with good cognitive and mental health have encouraging behavior to promote the ecosystem, such as reduce waste, conserve energy, and using the sustainable parts. So in this result, we can also find that with the help of yoga, we can increase the interpersonal and the interpersonal relationship in the students, which can further lead to the social harmony. So because of anxiety, stress and depression, students are more engaging in the substance abuse. So with the 8-week yoga practice, we can also decrease the risk of substance abuse and we can decrease the risk of suicide. So at the end, I can say that the yoga intervention for the 8-week can help to promote the social harmony and ecosystem with the improving mental health and cognitive function in the students in India and the world. Thank you.
So thank you, Shivam, for a very good presentation with brief things. So let us move to the next speaker. Again, I'm requesting the upcoming two speakers also maintain the time because it's a little bit we are running short actually. So I invite Renuka Jakar, who is the assistant professor of SGT University, Budhara Guruhab. She is trying to talk about the management of stress and anxiety. How do you control it through Raj Yoga meditation and some exercises and some through diet aspects actually? So let me invite Renuka Jakar.
Om Shanti. Good evening everyone. Myself Dr. Renuka, and I am going to present the results of study entitled Management of Stress and Anxiety through Raj Yoga Meditation combined with exercises and diet modification in polycystic ovarian syndrome females, a randomized controlled trial. So this study included females diagnosed with polycystic ovarian syndrome or PCOS. PCOS is a disease which is cluster of wide variety of symptoms. It includes biochemical markers like elevated hormonal levels of luteinizing hormone, thyroid stimulating hormone, prolactin and cortisol. It also includes clinical features like abnormal hairs on the body, on face, chest, abdomen in females, frontal baldness, then weight gain, irregular menstrual cycle, risk of developing diabetes, difficulty in conceiving, and it is the second most leading cause of infertility in the females. And its characteristic feature also includes ultrasonography representing multiple cysts in the ovaries. So research shows that PCOS females develop anxiety symptoms 6 times more than their healthy counterparts and depression symptoms 4 times more than other females. Stress is also higher in PCOS females when compared to normal healthy population. And all these act as a risk factor which can lead to chronic health diseases like diabetes, cardiovascular diseases and cancer in later stages of life. This study included 114 PCOS females divided into two groups of 57 females in each group. Group 1 did exercises along with Raj Yoga meditation and diet modification. Group 2 did only diet modification and Raj Yoga meditation. Exercises included aerobic exercises and weight training. Raj Yoga meditation included 15 minutes of positive self-affirmations 3 times a day. And diet modification included reduction in junk food. The results were shown at the level of significance less than 0.05, and it shown that anxiety and depression score and stress were reduced in both the groups in experimental as well as control groups. It indicated that if a patient is not able to do regular exercises because of lack of time, then they can practice regular diet modification and Raj Yoga meditation. Again, it will be helpful, same way as exercises are helpful. These females shown reduction in prolactin hormone levels, follicular stimulating hormone levels, prolactin and cortisol and luteinizing hormone levels. All these hormonal levels are responsible for maintaining normal menstrual cycle and ovulation. Cortisol hormone is released whenever there is stress experienced by a person. So results shown that after 12 weeks of following these protocols, cortisol level reduced in these females. Also, luteinizing hormone and follicular stimulating hormone had better ratio with respect to each other, and prolactin hormone and thyroid stimulating hormone, which were elevated earlier, were reduced now. So with these results, I will conclude that females play a vital role in maintaining harmony, happiness and growth of the family. If a female is mentally disturbed or physically diseased and creating negative self-perception, negative thoughts and under continuous anxiety, stress and depression, then it is at the same time going to affect the mental health and harmony in the family. When we talk about social harmony and ecological harmony, we need to first maintain self-harmony. When a person is under continuous stress, anxiety and depression, there are more chances of developing suicidal thoughts, negative self-perception, negative self-image, suicidal attempts, mood swings, sleep disorders, etc. So, if we want to maintain social harmony, first we will have to start with self-harmony, that is positive self-perception. And with help of Raj Yoga meditation, we teach how to be positive, how to think positive and how to build a positive perception in different situations even if you are diseased. Thank you.
Thank you, Renuka ji, to bring the impact of Raj Yoga meditation in your study. So we are coming to the last part of the presentation. Dr. Kavita Sharma, who is the professor and head of the Center for Women's Studies from Indore, she is going to talk about the spirituality versus resilience. So sorry madam, I request you to be very brief and conclude it actually. Thank you.
Thank you, Vaiji. Om Shanti. Spirituality in research means आध्यात्मिक मूल्यों और विश्वासों का अध्ययन, जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज, आत्मा और परमात्मा के बीच संबंधों का विश्लेषण, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर आध्यात्मिकता के प्रभाव का मूल्यांकन, आध्यात्मिक अनुभवों और प्रथाओं का विविध दृष्टिकोण से अध्ययन, यह अनुसंधान क्षेत्र व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन को समझने में मदद करता है और आध्यात्मिकता के प्रभावों को गहराई से जानने में सहायक होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बीके अंबिका दीदी, चेयरपर्सन स्पार्क एंड श्रीकांत भाई जी एंड होल टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्फ्रेंस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू, फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। सम्मानित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर नमस्कार। हम बात करें वैल्यू बेस्ड रिसर्च फॉर इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्मनी, मींस प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थायी उपयोग पर केंद्रित सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाला, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाला, पर्यावरणीय और सामाजिक तंत्र के बीच संतुलन बनाने वाला और नैतिक मूल्यों को शामिल करने वाला। यह रिसर्च दृष्टिकोण पारिस्थितिक और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक मूल्यों को एकत्रित करता है। स्टडीज हैव कंसिस्टेंटली शोन दैट इंडिविजुअल्स विथ हायर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी टेंड टू एग्जिबिट ग्रेटर रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। This correlation is thought to be due to the coping mechanism, meaning making and hope that spirituality provides. With this, I am sharing small research work on secondary data available to correlate spirituality and resilience. My co-author is Ms. Tejaswini Tiwari, MA Psychology student of Devi Ahilya Vishwavidyalay, Indore. आध्यात्मिकता की परिभाषा तो हम सभी जानते हैं और दो दिन से हम बराबर यहाँ सुन रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग इट। ओनली इफ वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी तो वो है उच्च शक्ति से जुड़ने की भावना, जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज, प्रेम और करुणा की भावना, आत्म जागरूकता और आत्म विकास, जीवन के प्रति बड़े दृष्टिकोण का विकास। ये सभी एलिमेंट्स हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। हम बराबर सारे सेशन सुन रहे हैं तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, तनाव और चिंता को कम कर पाते हैं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, आपसी संबंधों में सुधार होता है, जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज का मार्ग भी मिलता है, जो मेरे प्रीवियस को प्रेजेंटर्स ने भी आपके साथ शेयर किया। हम रेजिलियंस मींस लचीलेपन, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट की बात करें तो शोध से पता चलता है कि लचीलापन कोई निश्चित गुण नहीं है, बल्कि इसे विभिन्न आंतरिक और बाह्य संसाधनों के माध्यम से विकसित और मजबूत किया जा सकता है। ये बात बताई मॉस्टेन ने 2001 में अपनी रिसर्च में। स्पिरिचुअलिटी विच ऑफन इन्वॉल्व्स अ सेंस ऑफ कनेक्शन टू अ हायर पावर, पर्सनल बेनिफिट्स एंड प्रैक्टिसेस दैट प्रोवाइड मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ हैज बीन सजेस्टेड एज वन सच रिसोर्स। तो रेजिलियंस बढ़ाने में आध्यात्मिकता की संभावित भूमिका ने साइकोलॉजिकल रिसर्च में अधिक ध्यान आकर्षित किया है। इस अध्ययन का उद्देश्य आध्यात्मिकता और लचीलेपन के बीच संबंध पता लगाना है, इस हाइपोथेसिस के साथ कि आध्यात्मिकता के उच्च स्तर अधिक लचीलेपन से जुड़े हुए हैं। हम रेजिलियंस की बात करें तो ये एक ऐसी क्षमता है जो व्यक्ति को कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को तनाव, आघात और असफलता के बावजूद अपने जीवन को पुनः स्थापित करने और आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर आप सभी को आदरणीय अंबिका दीदी की बात याद हो, जो उन्होंने अपने अबाउट द कॉन्फ्रेंस स्पीच में कही थी कि छोटी सी मशीन बना दी गई है एआई, जो 50 लोगों का काम एक साथ कर देती है, और 50 लोगों को जब जॉब से निकाला तो वो व्यथा उनके साथ डिस्कस की गई। शी वॉज शेयरिंग दिस, आप सबको भी याद होगा कि वो लोग अपना घर कैसे चलाएंगे, अपने पेरेंट्स को कैसे हेल्प करेंगे, अपने बच्चों की एजुकेशन पर कैसे ध्यान देंगे, और कितने डिप्रेशन एंग्जाइटी में उस समय पे वो होंगे। पर अगर उन स्पिरिचुअलिटी के साथ में उनका रेजिलियंस बढ़ता है तो दे मे कोप अप विद दिस। तो दीदी की उस परेशानी को समझते हुए मुझे ऐसा लगा कि आई हैव चोजन द राइट पाथ फॉर माय स्टडी। सो मेन एलिमेंट्स ऑफ रेजिलियंस आर कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता को बढ़ाना, तनाव और आघात को सहन करने की क्षमता बढ़ाना, असफलता से सीखना और आगे बढ़ने की क्षमता को बढ़ाना। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी स्टडी की है, इफ स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रेजिलियंस, इंटीग्रेटिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इनटू थेरेपेटिक इंटरवेंशंस कुड प्रोवाइड अ वैल्यूएबल टूल फॉर एनहेंसिंग इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कोप अप विथ लाइफ चैलेंजेस। सो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आध्यात्मिकता और लचीलेपन के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। इस संबंध को समर्थन प्रदान करने के लिए बढ़ती संख्या के बावजूद अधिक व्यापक और क्वांटिटेटिव रिसर्च की आवश्यकता कंटिन्यूअस बनी हुई है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा फॉर द स्टडी। जैसा कि सवेरे आप सबको याद हो, सुदेश दीदी ने, आदरणीय दीदी ने ये रिसर्च की इम्पोर्टेंस की बात कही थी। तो रिसर्च मीन्स सर्च ऑफ न्यू नॉलेज विद द एग्जिस्टिंग वन। जब तक हमको ये मालूम नहीं होगा कि व्हाट अर्लियर रिसर्चर्स हैव डन, वी नॉट बी एबल टू डिफाइन अवर रिसर्च प्रॉब्लम। सो वी हैव गॉन थ्रू थॉरो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम नॉट शेयरिंग हियर। उसके बाद ही हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर सके। एंड आई एम डायरेक्टली कमिंग टू मेथडोलॉजी। दिस स्टडी इम्प्लॉयज द मिक्स्ड मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा which was collected through a standardized survey measuring spirituality and resilience level. We have collected the data from 200 adults and direct in-depth interviews were conducted with 20 participants. This was the methodology of the study, and data analysis was done on the adhyatmikta aur lachilepan ke beech sambandh nirdharit karne ke liye Pearson correlation ka उपयोग किया गया फॉर द स्पिरिचुअल वेलबींग स्केल एंड CDRICS। दोनों के लिए ही रेजिलियंस और स्पिरिचुअलिटी के लिए पियर्सन कोरिलेशन को स्टडी किया गया, जिसके हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। अब मैं डायरेक्टली रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी। द एनालिसिस रिवील्ड अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रेजिलियंस। Participants who scored higher on the spiritual well-being scale also tended to score higher on the Conner-Davidson resilience scale. Means, यह indicate करता है कि आध्यात्मिक कल्याण के उच्च स्तर अधिक लचीलेपन से जुड़े हुए हैं। Means, spirituality level आपका high है, तो आपका resilience भी high होगा। और discussion की बात अगर मैं कहूं, समय की कमी होने की वजह से मैं शॉर्ट में आगे बढ़ती जा रही हूं, भाई साहब को देखकर मुझे लग रहा है जल्दी रहना चाहिए। सो द रिजल्ट्स ऑफ दिस स्टडी सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट स्पिरिचुअलिटी इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ रेजिलियंस। यह रिसर्च प्रीवियस रिसर्चेस के अनुरूप है, जो कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमको ये चीज देखना होती है कि जो अर्लियर रिसर्चर्स ने किया हुआ है, वी आर इन लाइन विथ और नॉट। तो आध्यात्मिक विश्वास और प्रथाएं किसी व्यक्ति की तनाव और प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने की क्षमता को बढ़ा सकती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इस बात के गहरे प्रमाण देती है कि स्पिरिचुअलिटी रेजिलियंस को बढ़ाने में कैसे योगदान देती है। अगर मैं इम्प्लीकेशन की बात करूं तो फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिसर्च मानसिक पेशेवरों और चिकित्सकों के लिए महत्वपूर्ण है, एवं इन्हें इंटीग्रेट करना उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो अपना रेजिलियंस बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को इनॉग्रल सेशन में वन ऑफ द गेस्ट फ्रॉम मेडिसिन याद हो तो उन्होंने इस तरह का एक केस स्टडी हमारे साथ शेयर किया था। इसके साथ ही ऐसा सहायता समूह बनाना जो आध्यात्मिक कल्याण पर केंद्रित करते हो और तनाव का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ब्रह्म कुमारीज आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इन दिस रिगार्ड एंड एट द एंड यह रिसर्च वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करती है। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो क्रॉस सेक्शनल स्पिरिचुअलिटी एंड रेजिलियंस के बीच कॉजल इन्फरेंस निकालने की क्षमता को लिमिट करता है। फॉर दिस लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज रिक्वायर्स टू एक्सप्लोर हाउ स्पिरिचुअलिटी इन्फ्लुएंस रेजिलियंस ओवर टाइम एंड आई एम श्योर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू द लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी फॉर द नेक्स्ट सार्क कॉन्फ्रेंस एंड विल बी प्रेजेंटिंग माई रिसर्च पेपर ऑन दिस। एंड फ्यूचर में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि किसी का इंटरेस्ट इसमें बनता हो तो अधिक रिस्पॉन्डेंट्स के साथ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च की आवश्यकता है। लास्ट वन मिनट और लूंगी सर, जो कि लचीलेपन और इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्मोनी पारिस्थितिक और सामाजिक सद्भाव के बीच संबंध की अगर हम बात करें तो लचीलेपन से व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकता है जिससे पारिस्थितिक सद्भाव बढ़ता है, विच इज द क्रक्स ऑफ माय पेपर विच इज रिलेटिंग टू द टॉपिक ऑफ द कॉन्फ्रेंस विच यू डिस्कस अर्लियर। सो लचीलेपन से व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का सामना कर सकता है जिससे सामाजिक सद्भाव बढ़ता है। लचीलेपन से व्यक्ति अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बैठा सकता है जिससे पारिस्थितिक और सामाजिक सद्भावना दोनों बढ़ते हैं। रेजिलियंस से व्यक्ति स्थायी जीवन शैली को अपना सकता है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जिससे पारिस्थितिक और सामाजिक सद्भाव दोनों बढ़ते हैं। यह संबंध भी सकारात्मक है अर्थात रेजिलियंस के साथ इकोलॉजिकल और सोशल हार्मोनी दोनों बढ़ते हैं और रेजिलियंस बढ़ता है स्पिरिचुअलिटी बढ़ने के साथ। तो अंत में मैं आप लोगों के साथ जिन्होंने वेरी पेशेंटली मुझे सुना और भारत भाई जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, मुझे अकोमोड किया उन्होंने, तो मैं आप सभी के लिए अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। रुकना नहीं, थमना नहीं, बढ़ते रहो स्पिरिचुअलिटी की राह पर। रुकना नहीं, थमना नहीं, बढ़ते रहो स्पिरिचुअलिटी की राह पर। मंजिल मिलेगी जरूर, रखो यकीन इस चाह पर। हो जज्बा अगर दिल में तो हर मुश्किल आसान है। आप सब ज्ञान सरोवर में स्पिरिचुअलिटी की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, आप सबकी अलग पहचान है, आप सबकी अलग पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पिरिचुअलिटी की राह पर बढ़ते रहे, हायर लेवल ऑफ रेजिलियंस पर पहुंचे, यही शुभेच्छा है। थैंक यू वेरी मच। सॉरी फॉर टेकिंग वन मोर मिनट। थैंक यू वेरी मच।
सो लेट मी गिव अ फाइनल थैंक्स टू ऑल द प्रेजेंटर्स हु मेड देयर थिंग्स एज पर देयर रिसर्च एंड स्टडीज। We have some more papers are there which we will see tomorrow. With this I am trying to conclude this session. Just 30 seconds we will remember Paramatma and then we will disperse it.